हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सुबह का समय था और वेदांश ठाकुर नाश्ते की टेबल पर अकेला बैठा था। उसकी नज़रें सामने सजे हुए नाश्ते पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। घर का माहौल एकदम शांत था, सिवाय किचन से आ रही कुछ हल्की आवाज़ों के। सामने उसकी माँ सुनीति और अंबिका किचन के दरवाजे के पास खड़ी आपस में बातें कर रही थीं। वेदांश ने उन्हें देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए अपने सामने लगे नाश्ते की तरफ देखने लगा। आज सब कुछ उसकी पसंद का ही बना था, इसीलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हुआ। उसकी माँ और अंबिका दोनों ही वहाँ पर खड़ी हुई थीं, लेकिन किसी ने भी उसे नाश्ते के टेबल पर ज्वाइन नहीं किया। कुछ देर बाद वो अचानक बोला, अंबिका तुम भी नाश्ता कर लो। उसकी आवाज़ में हल्का सा आदेश था, मानो वो उसकी मर्जी से ज़्यादा नहीं जानता था। अंबिका उसकी ओर मुड़ी और हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उससे पहले वेदांश की माँ सुनिधि जी ने जवाब दिया, वेदांश हम दोनों का आज से नवरात्रि का व्रत शुरू हो रहा है, इसीलिए हम नाश्ता नहीं करेंगी। हमने अपना व्रत का नाश्ता पहले ही खा लिया है। ये सुनते ही वेदांश की भौहें तन गईं। उसने हल्की नाराज़गी भरी आवाज़ में कहा, मैंने आपसे नहीं अंबिका से पूछा था, और आपने क्यों अंबिका को भी व्रत रखने के लिए कहा? ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होता। क्या मिला आपको व्रत करके? वेदांश की माँ को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगा। वेदांश की माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने अंबिका से कुछ नहीं कहा बेटा, ये उसकी अपनी श्रद्धा है। उसने खुद ही व्रत रखने का फ़ैसला किया है, क्योंकि वो पहले से ही व्रत रखती थी। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते ना, और वैसे भी व्रत हमारी अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, इससे हमें भगवान के करीब होने का एहसास मिलता है। अंबिका जो अब तक चुप थी, उसने भी धीरे से कहा, हाँ वेदांश, मैं अपने घर में भी व्रत रखती थी और यहाँ भी रख रही हूँ। ये मेरी श्रद्धा है और मैं इसे अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तुम आंटी को क्यों बातें सुना रहे हो? वेदांश ने अंबिका की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, लेकिन इन व्रतों का क्या मतलब है? भूखा रहकर भगवान को खुश करने का कोई तुक नहीं है। अगर भगवान होते भी हैं तो क्या उन्हें यही चाहिए कि हम सब उनके लिए व्रत करें? सब सिर्फ दिखावा होता है। उसके चेहरे पर एक नास्तिकता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो भगवान में इतना नहीं मानता था, खासकर अपने पापा की मौत के बाद। अंबिका ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, हर किसी की आस्था अलग होती है वेदांश, तुम इसे नहीं समझोगे क्योंकि तुम हमेशा लॉजिक की बात करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें लॉजिक से परे होती हैं। वेदांश ने अंबिका की बात पर हंसते हुए कहा, लॉजिक से परे? माँ, ये सब सिर्फ ढोंग है। भूखा रहने से भगवान खुश नहीं होते। सिर्फ 9 दिन व्रत और दिन रात पूजा पाठ करने से कुछ नहीं बदलता। अंबिका ने उसकी बात का जवाब देने के लिए एक पल का इंतज़ार किया, फिर शांति से बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब है वेदांश? हम तुम्हें व्रत रखने के लिए तो नहीं कह रहे। तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो और हमें माता के नवरात्र का व्रत करने दो। वेदांश की नज़रें अंबिका पर टिक गईं। उसकी बातों में मजबूती और सीरियसनेस एकदम साफ थी। उसे ये बात खटकने लगी थी कि क्यों हर कोई इन धार्मिक मान्यताओं पर इतना विश्वास करता है, जबकि उसे इन सब पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। वेदांश ने थोड़ी तीखी आवाज़ में कहा, अंबिका तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भूखी रहो या फिर मॉम भूखी रहें। तुम लोगों को भूखे रहने का शौक है तो रहो। वेदांश की माँ सुनिधि जी ने उसकी बात पर थोड़ा गंभीर होकर जवाब दिया, वेदांश भगवान से जुड़ी बातें तुम नहीं समझोगे। तुम लॉजिक की दुनिया में जीने वाले इंसान हो, लेकिन तुम्हारे इस ऊपरी दिखावे और पैसों से जीवन के सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। कुछ के लिए हमें भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है। वेदांश इस बात पर कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने सामने रखे हुए फलों को खाने लगा। अंबिका ने वेदांश की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये बातें बेकार हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए ये जीवन का हिस्सा है। तुम्हें विश्वास और श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमें है, और हम पूरी श्रद्धा से नवरात्र के व्रत करेंगी। तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वेदांश ने गहरी सांस ली और थोड़ा झल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को समझाना ही बेकार है। जिसे जो करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी देर हो रही है। अंबिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ नाश्ता करो, और क्यों बेकार की बहस में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? जाओ, तुम अपना काम देखो और ऑफिस के लिए निकलो। सुनिधि ने अपने बेटे की ओर देखा और थोड़ी गंभीरता से कहा, वेदांश, हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं। तुमने तर्क और कर्म पर विश्वास किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन आस्था का भी अपना स्थान होता है। तुम जब इसे नहीं मानते तो हमें इसे करने से रोकने का कोई हक नहीं है। वेदांश ने अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको पता है पापा को भी इन सब चीज़ों में कितना विश्वास था, लेकिन फिर भी। वेदांश की ये बात सुनकर उसकी माँ एकदम चुप हो गई। उनके पास भी शायद कोई जवाब नहीं बचा था और थोड़ी मायूसी भी उनकी आंखों में झलकने लगी। वहीं उनके बगल में खड़ी अंबिका काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि इन सबका वेदांश के पिता की मौत से क्या लेना देना है। वो तो एक हार्ट अटैक थी जहाँ तक उसे पता था। वेदांश ने अपनी प्लेट से थोड़ा नाश्ता उठाया और खामोशी से खाने लगा। उसकी आंखों में अब भी नाराजगी और उलझन थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने अपनी प्लेट को एक तरफ रखा, कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बेमन से बोला, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हो सकता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाए। वैसे मेरी पीठ पीछे यहाँ पर कोई पूजा मत रख लेना। अगर तुम लोगों को पूजा पाठ करना हो तो मंदिर चले जाना, करीब वाले, लेकिन घर पर ऐसा कुछ भी अरेंज मत करना, वेदांश ने एक तरफ से ऑर्डर देते हुए कहा। और इसके साथ वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी सोच में अब भी सवाल थे। उसने घर से बाहर कदम रखा और गाड़ी में बैठते हुए एक बार फिर अंबिका और अपनी माँ की बातें याद करने लगा। इतने दिनों में आज पहली बार ही है उसने घर पर इतनी बात की थी, नहीं तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता था। पता नहीं क्यों उसने अंबिका को साथ में नाश्ता करने के लिए भी पूछा था, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। वहीं दूसरी तरफ उसके निकलते ही अंबिका ने अपनी सास से कहा, वेदांश ऐसा क्यों है, क्या उसे सच में भगवान पर विश्वास नहीं है? अंबिका के इस सवाल पर सुनिधि जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, पता नहीं क्यों ये लड़का हमेशा से ऐसा ही है। इसके पिता भी बहुत कोशिश करते थे, लेकिन ये कोई भी त्योहार नहीं मानता और पूजा पाठ में भी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाता। मैं तो अब कहना ही छोड़ दिया था। आज काफी सालों बाद ये बात दोबारा से घर में उठी थी, लेकिन देखा ना तुमने, उसने कैसे अपनी बात रखी और खुद की बात को ही ऊपर रखा। अंबिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो अपनी सास की कही बातों को और वेदांश की बातों को याद करके सब सोचने की कोशिश में लगी थी। वहीं दूसरी तरफ वेदांश ठाकुर ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, तभी केबिन के अंदर आते हुए उसके असिस्टेंट सौरव की आवाज़ कानों में पड़ी। उसके असिस्टेंट ने बताया, सर, त्रिशा मैन का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। वेदांश ने एक पल के लिए माथे पर हाथ रखा, जैसे दिन की शुरुआत में ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। ठीक है, कॉल ट्रांसफर करो, उसने बेमन से कहा। फिर फोन उठाकर अपनी आवाज में एक फॉर्मेलिटी लाते हुए बोला, हेलो त्रिशा, कैसी हो? त्रिशा की हंसी फोन के दूसरी तरफ से सुनाई दी, जो हमेशा की तरह एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट से भरी हुई थी। त्रिशा ने कॉल के दूसरी तरफ से बोला,
हेलो वेदांश, मैं ठीक हूँ और मैं आज भी तुम्हारे ऑफिस नहीं आताऊंगी। वेदांश, जो पिछले दो दिनों से उसका इंतजार कर रहा था, उसके ऐसे मना करने पर एकदम ही गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है और ना ही मेरे साथ काम करना है, तो सीधे मना कर दो ना, इस तरह से रोज रोज बहाने क्यों बना रही हो? वेदांश की ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर त्रिशा थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर उसे समझाते हुए बोली, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं सोच रही थी कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले थोड़ा वक्त साथ बिताएं, आखिरकार बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ावा देना भी जरूरी होता है ना? टू बी कंटिन्यूड, क्या लगता है आप लोगों को, क्या है त्रिशा के इरादे और क्या वो सिर्फ वेदांश को परेशान कर रही है या फिर वो सच में उसकी लाइफ में वापस आना चाहती है? और क्या वेदांश उसे एक्सेप्ट करेगा अपनी लाइफ में? क्या वेदांश अंबिका के लिए अभी भी कुछ नहीं फील करता है? और क्या होगा जब अंबिका को पता चलेगा त्रिशा के इरादों के बारे में? क्या उसे बुरा लगेगा या फिर वो इस मौके का फायदा उठाकर वेदांश की लाइफ से बाहर निकलना चाहेगी? क्या लगता है आप लोगों को? इन सवालों के जवाब बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा ये आज का एपिसोड और आज का ट्विस्ट?